ਰਾਗ ਮਾਝ ਮਹਿਲਾ ਤੀਜਾ। ਆਪ ਵੰਜਾਏ ਤਾਂ ਸਭ ਕਿਛ ਪਾਏ, ਗੁਰ ਸ਼ਬਦੀ ਸੱਚੀ ਲਿਵ ਲਾਏ।
ਸਤਸੰਗ ਕੇ ਇਹ ਬਚਨ ਹਜ਼ੂਰ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੁਆਰਾ ਫਰਮਾਏ ਗਏ ਸਤਸੰਗ ਕੇ ਹਿੰਦੀ ਅਨੁਵਾਦ ਪਰ ਆਧਾਰਿਤ ਹੈ। ਯਹ ਤੀਸਰੀ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਕੀ ਬਾਣੀ ਹੈ। ਇਸ ਛੋਟੇ ਸੇ ਸ਼ਬਦ ਮੇਂ ਆਪ ਗੁਰਮਤ ਯਾਨੀ ਸੰਤੋ ਮਹਾਤਮਾਓਂ ਕੀ ਤਾਲੀਮ ਕੇ ਬਾਰੇ ਮੇਂ ਬੜੀ ਅੱਛੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖੋਲ ਕਰ ਸਮਝਾ ਰਹੇ ਹੈਂ। ਯੂੰ ਤੋ ਕਿਸੀ ਵੀ ਮਹਾਤਮਾ ਕੀ ਬਾਣੀ ਲੇਕਰ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਦਿਲ ਸੇ ਖੋਜ ਕੀ ਜਾਏ ਤੋ ਯਹੀ ਪਤਾ ਚਲਤਾ ਹੈ ਕਿ ਹਰ ਇੱਕ ਮਹਾਤਮਾ ਕਾ ਏਕ ਹੀ ਸੰਦੇਸ਼ ਹੈ, ਏਕ ਹੀ ਉਪਦੇਸ਼ ਹੈ। ਦੁਨੀਆ ਮੇਂ ਕਭੀ ਕੋਈ ਮਹਾਤਮਾ ਕੌਮ ਯਾ ਮਜ਼ਹਬ ਬਣਾਨੇ ਕੇ ਲੀਏ ਨਹੀਂ ਆਤਾ। ਮਹਾਤਮਾ ਤੋ ਕੇਵਲ ਹਮਸੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਕੀ ਭਗਤੀ ਕਰਵਾ ਕਰ, ਹਮੇਂ ਦੇਹ ਕੇ ਬੰਧਨੋ ਸੇ ਆਜ਼ਾਦ ਕਰਵਾ ਕਰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਕੇ ਸਾਥ ਮਿਲਾਨੇ ਕੇ ਲੀਏ ਆਤੇ ਹੈਂ। ਲੇਕਿਨ ਐਸੇ ਗੁਰਮੁਖੋਂ ਔਰ ਮਾਲਿਕ ਕੇ ਭਗਤੋਂ ਕੇ ਜਾਣੇ ਕੇ ਬਾਅਦ ਹਮ ਸੰਸਾਰਿਕ ਜੀਵ ਬਾਹਰ ਮੁਖੀ ਹੋ ਜਾਤੇ ਹੈਂ, ਕਰਮ ਕਾਂਡ ਮੇਂ ਫਸ ਜਾਤੇ ਹੈਂ। ਉਨ ਮਹਾਤਮਾਓਂ ਕੇ ਇਤਨੇ ਊਚੇ ਔਰ ਸੁੱਚੇ ਉਪਦੇਸ਼ ਕੋ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਦਾਇਰੋਂ ਮੇਂ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਕੌਮੋਂ ਮਜ਼ਹਬੋਂ ਮੁਲਕੋਂ ਕੀ ਸ਼ਕਲ ਦੇਤੇ ਹੈਂ ਔਰ ਏਕ ਦੂਸਰੇ ਕੇ ਸਾਥ ਲੜਨਾ ਝਗੜਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦੇਤੇ ਹੈਂ। ਹਮ ਕਿਸ ਲੀਏ ਐਸਾ ਕਰਤੇ ਹੈਂ? ਕੋਈ ਆਪਣੇ ਪੇਟ ਕੇ ਲੀਏ ਕਰਤਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਆਪਣੀ ਮਾਨ ਬੜਾਈ ਕੇ ਲੀਏ ਕਰਤਾ ਹੈ। ਆਪ ਸਮਝਾਤੇ ਹੈਂ ਕਿ ਹਮਾਰੀ ਆਤਮਾ ਉਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਕਾ ਅੰਸ਼ ਹੈ, ਹਮ ਉਸ ਸਤਨਾਮ ਰੂਪੀ ਸਮੁੰਦਰ ਕੀ ਬੂੰਦ ਹੈਂ, ਉਸ ਮਾਲਿਕ ਸੇ ਬਿਛੜ ਕਰ ਇਸ ਮਾਇਆ ਕੇ ਜਾਲ ਮੇਂ ਫਸੇ ਹੋਏ ਹੈਂ। ਮਨ ਕੇ ਅਧੀਨ ਹੋ ਕਰ ਜੋ ਜੋ ਕਰਮ ਕਰਤੇ ਹੈਂ, ਅੱਛੇ ਵੀ ਕਰਤੇ ਹੈਂ, ਬੁਰੇ ਵੀ ਕਰਤੇ ਹੈਂ, ਉਨਕੇ ਕਾਰਨ ਹਮਾਰੀ ਆਤਮਾ ਕੋ ਬਾਰ ਬਾਰ ਇਸ 84 ਕੇ ਜੇਲ ਖਾਨੇ ਮੇਂ ਆਨਾ ਪੜਤਾ ਹੈ। ਨਾ ਅੱਛੇ ਕਰਮ ਕਰਕੇ ਦੇਹ ਕੇ ਬੰਧਨੋਂ ਸੇ ਬਚ ਸਕਤੇ ਹੈਂ, ਨਾ ਬੁਰੇ ਕਰਮੋਂ ਕੇ ਕਾਰਨ ਕਭੀ ਹਮਾਰਾ 84 ਕੇ ਦੁੱਖੋਂ ਸੇ ਛੁਟਕਾਰਾ ਹੋ ਸਕਤਾ ਹੈ। ਇਨ ਕਰਮੋਂ ਕੇ ਕਾਰਨ ਜਿਸ ਜਗ੍ਹਾ ਵੀ ਜਾ ਕਰ ਜਨਮ ਲੇਤੇ ਹੈਂ, ਹਮੇਂ ਦੁੱਖ ਹੀ ਦੁੱਖ, ਮੁਸੀਬਤੇ ਹੀ ਮੁਸੀਬਤੇ ਸਹਿਨੀ ਪੜਤੀ ਹੈਂ। ਕਿਸੀ ਵੀ ਜਾਮੇ ਮੇਂ ਜਾ ਕਰ ਹਮ ਸੁਖ ਹਾਸਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਤੇ, ਸ਼ਾਂਤੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਤੇ। ਅਗਰ ਇਨਸਾਨ ਕਾ ਜਾਮਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਕੇ ਜਿਸੇ ਮਹਾਤਮਾ ਟੌਪ ਆਫ ਦੀ ਕ੍ਰੀਏਸ਼ਨ ਕਹਿ ਕਰ ਸਮਝਾਤੇ ਹੈਂ, ਹਮਾਰੀ ਇਹ ਦੁਰਦਸ਼ਾ ਹੈ ਕਿ ਰੋਟੀ ਕੱਪੜੇ ਕੇ ਲੀਏ ਤੜਪਤੇ ਔਰ ਤਰਸਤੇ ਫਿਰਤੇ ਹੈਂ, ਤੋ ਫਿਰ ਔਰ ਕਿਸ ਜਾਮੇ ਮੇਂ ਜਾ ਕਰ ਹਮ ਸੁਖ ਹਾਸਲ ਕਰ ਸਕਤੇ ਹੈਂ, ਸ਼ਾਂਤੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਸਕਤੇ ਹੈਂ। ਇਸ ਲਈ ਮਹਾਤਮਾ ਹਮੇਂ ਯਹੀ ਉਪਦੇਸ਼ ਦੇਤੇ ਹੈਂ ਕਿ ਜਬ ਤੱਕ ਹਮਾਰੀ ਆਤਮਾ ਵਾਪਸ ਜਾ ਕਰ ਉਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਕੇ ਸਾਥ ਨਹੀਂ ਮਿਲਤੀ, ਇਸਕਾ ਦੇਹ ਕੇ ਬੰਧਨੋਂ ਸੇ ਜਨਮ ਮਰਨ ਕੇ ਦੁੱਖੋਂ ਸੇ ਕਭੀ ਕਿਸੀ ਹਾਲਤ ਮੇਂ ਛੁਟਕਾਰਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਤਾ। ਇਸ ਲਈ ਹਰ ਇੱਕ ਜੀਵ ਕੋ ਪਰਮਾਤਮਾ ਕੀ ਖੋਜ ਹੈ। ਹਮ ਸਭੀ ਸੰਸਾਰਿਕ ਜੀਵ ਆਪਣੀ ਆਪਣੀ ਬੁੱਧੀ ਕੇ ਅਨੁਸਾਰ ਹਜ਼ਾਰੋਂ ਹੀ ਯੁਕਤੀਓਂ ਔਰ ਤਰੀਕੋਂ ਸੇ ਉਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਕੋ ਢੂੰਢਣੇ ਕੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਤੇ ਹੈਂ, ਜਪ ਤਪ ਕਰਤੇ ਹੈਂ, ਪੂਜਾ ਪਾਠ ਕਰਤੇ ਹੈਂ, ਦਾਨ ਪੁੰਨੇ ਕਰਤੇ ਹੈਂ, ਘਰ ਬਾਰ ਛੋੜ ਕਰ ਜੰਗਲੋਂ ਪਹਾੜੋਂ ਮੇਂ ਛਿਪ ਕਰ ਬੈਠ ਜਾਤੇ ਹੈਂ। ਕੋਈ ਪਰਮਾਤਮਾ ਕੋ ਮੰਦਿਰੋਂ ਮਸਜਿਦੋਂ ਗੁਰਦੁਆਰੋਂ ਮੇਂ ਢੂੰਢਤਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਗ੍ਰੰਥ ਪੋਥੀਓਂ ਮੇਂ ਔਰ ਕੋਈ ਹਿਮਾਲਿਆ ਪਰਬਤ ਮੇਂ ਖੋਜ ਕਰਨੇ ਮੇਂ ਲਗਾ ਹੁਆ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਸਮਝਾਤੇ ਹੈਂ ਕਿ ਵਹਿ ਪਰਮਾਤਮਾ ਕਹੀਂ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਵਹਿ ਹਮਾਰੇ ਸਰੀਰ ਕੇ ਅੰਦਰ ਹੈ। ਅਗਰ ਕੋਈ ਲੈਬੋਰਟਰੀ ਹੈ ਜਿਸ ਕੇ ਅੰਦਰ ਜਾ ਕਰ ਹਮ ਮਾਲਿਕ ਕੀ ਖੋਜ ਕਰ ਸਕਤੇ ਹੈਂ, ਤੋ ਵਹਿ ਕੇਵਲ ਹਮਾਰਾ ਸਰੀਰ ਹੈ, ਹਮਾਰੀ ਦੇਹ ਹੈ। ਆਜ ਤੱਕ ਬਾਹਰ ਨਾ ਕਿਸੀ ਕੋ ਮਿਲਾ ਹੈ, ਨਾ ਮਿਲ ਸਕਤਾ ਹੈ। ਹਜ਼ਰਤ ਈਸਾ ਕਹਤੇ ਹੈਂ ਕਿ ਮਾਲਿਕ ਕੀ ਦਰਗਾਹ, ਮਾਲਿਕ ਕੇ ਰਹਿਣੇ ਕੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇਰੇ ਅੰਦਰ ਹੈ। ਯਹੀ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਸਮਝਾਤੇ ਹੈਂ, ਸਦਾ ਹਜ਼ੂਰ ਦੂਰ ਨਾ ਦੇਖੋ, ਰਚਨਾ ਜਿਨ ਰਚਾਈ। ਜਿਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਦੁਨੀਆ ਕੀ ਇਹ ਸਾਰੀ ਰਚਨਾ ਪੈਦਾ ਕੀ ਹੈ, ਵਹਿ ਹਮਸੇ ਕਹੀਂ ਦੂਰ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਵਹਿ 24 ਘੰਟੇ ਹਮਾਰੇ ਸਾਥ ਹੈ, ਹਮਾਰੇ ਸਰੀਰ ਔਰ ਹਮਾਰੀ ਦੇਹ ਕੇ ਅੰਦਰ ਬੈਠਾ ਹੁਆ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਸਮਝਾਤੇ ਹੈਂ, ਕਾਇਆ ਅੰਦਰ ਜਗ ਜੀਵਨ ਦਾਤਾ ਵਸੈ, ਸਭਨਾ ਕਰੇ ਪ੍ਰਿਤਪਾਲਾ। ਵਹਿ ਪਰਮਾਤਮਾ ਜਿਸ ਨੇ ਸਾਰੇ ਜਗ ਕੋ ਜੀਵਨ ਦਿਆ ਹੈ, ਜੋ ਸਭ ਕਾ ਦਾਤਾ, ਸਭ ਕਾ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਹੈ, ਜੋ ਸਭ ਕੀ ਸੰਭਾਲ ਕਰਤਾ ਹੈ, ਪਾਲਣ ਪੋਸ਼ਣ ਕਰਤਾ ਹੈ, ਵਹਿ ਪਰਮਾਤਮਾ ਇਸ ਕਾਇਆ ਕੇ ਅੰਦਰ ਬੈਠਾ ਹੁਆ ਹੈ। कबीर साहब भी यही समझाते हैं, ज्यों तिल माही तेल है ज्यों चकमक में आग, तेरा साईं तुझ में जाग सके तो जाग। कि भाई जिस तरह तिलों में तेल होता है, पत्थर के अंदर अग्नि होती है, इसी तरह जिस परमात्मा की तू खोज कर रहा है वह तेरे शरीर के अंदर है, तेरे वजूद के अंदर है। अगर कोई चीज़ हमारे घर में खो जाए तो हम घर के अंदर खोज करके ही उसे पा सकते हैं। अगर बाहर जाकर सड़कों पर खोज करनी शुरू कर दें तो हम उस खोई हुई चीज़ को किस तरह प्राप्त कर सकते हैं। गुरु अमरदास जी समझाते हैं, गुरमुख होवे सो काया खोजे होर सब परम पुलाई। कि जो गुरमुख लोग हैं, मालिक के भगत और प्यारे हैं, वह हमेशा शरीर या देह के अंदर परमात्मा की खोज करते हैं। बाकी सब दुनिया के जीव कर्म कांड में उलझे हुए हैं, बाहर मुखी हुए बैठे हैं। अब मन में विचार उठता है कि अगर परमात्मा हमारे सब के अंदर है तो हमें दिखाई क्यों नहीं देता। हम आंखें बंद करते हैं तो हमें अपने अंदर अंधेरा ही अंधेरा दिखाई देता है। गुरु साहब फरमाते हैं, आप वंजाए तो सब किच पाए, कि वह परमात्मा तो पत्ते पत्ते कण कण में व्यापक है, चोरों ठगों साधु संतों महात्माओं सभी के अंदर है। लेकिन जब तक अंदर जाकर अपने आप की रुकावट दूर नहीं करते, उस परमात्मा के अंदर मौजूद होते हुए भी हम उसे नहीं पा सकते। ये अपने आप की रुकावट क्या है? ये खुदी हमें, मैं मेरी या अहम की रुकावट है। जब तक ये रुकावट दूर नहीं करते, उस परमात्मा के हमारे अंदर होते हुए भी हम कभी उसके साथ मिलाप नहीं कर सकते। गुरु अमरदास जी फरमाते हैं, हर जियो साचा ऊंचो ऊंचा हमें मार मिलावणिया। कि परमात्मा सच्चा है, पवित्र है, सचखंड का रहने वाला है, पर हमें मार मिलावणिया। जब तक हम होमे की बीमारी को अपने अंदर से दूर नहीं करते, हम कभी उस परमात्मा को पा नहीं सकते। ये होमे क्या है? जो हम सारा दिन सोचते हैं कि मेरी कौम है, मेरा मजहब है, मेरा मुल्क है, मेरी औलाद है, मेरी जायदाद है, जिन चीज़ों को सारा दिन मेरा मेरा कहते हैं, वास्तव में ये सब कुछ ही उस परमात्मा का है। हम अपने आप को उससे अलग समझे बैठे हैं, इनको अपना बनाने की कोशिश करते हैं। ये आज तक ना कभी किसी के बने हैं, न बन सकते हैं। लेकिन इनको अपना बनाने की ख्वाहिश हमें इनके मोह और प्यार में इतना फंसा देती है कि हमें रात को सपने भी इन्हीं के आते हैं, और मौत के समय सिनेमे के स्क्रीन की तरह इन्हीं की शक्लें हमारी आंखों के आगे आकर घूमना शुरू कर देती हैं। जहाँ आशा तहाँ बासा, आखिरी वक्त जिस तरफ हमारा ख्याल होता है, हम दुनिया के जीव उसी रौब में बहना शुरू कर देते हैं। कौन सी चीज़ हमें देह के बंधनों की तरफ खींच कर लाई? दुनिया का मोह, दुनिया का प्यार लाया। सो जब तक हमारे अंदर से दुनिया का मोह और प्यार नहीं निकलेगा, तब तक हमारी आत्मा वापस जाकर परमात्मा के साथ नहीं मिल सकती। गुरु साहब फरमाते हैं कि ये दुनिया झूठी है, इसका मोह और प्यार भी झूठा है। ये दुनिया झूठी क्यों है? क्योंकि ये नष्ट हो जाएगी, फना हो जाएगी। इसके साथ हमारा मोह और प्यार क्यों झूठा है? क्योंकि इसका प्यार हमें बार बार देह के बंधनों में फंसाता है। ये प्यार हमें इस रचना का हिस्सा ही बनाए रखता है, वापस जाकर उस रचना करने वाले के साथ मिलने नहीं देता। इसका प्यार हमें जन्म मरण के दुखों में ही फंसाए रखता है। इसलिए गुरु साहब कहते हैं कि ये दुनिया और इसका प्यार दोनों ही झूठे हैं। इस झूठी दुनिया से हमारा झूठा मोह और प्यार कब निकलता है? जब हम गुरमुखों के द्वारा शब्द या नाम की लज्जत प्राप्त कर लेते हैं। गुर शब्दी सच्ची लिव लाए, जब परमात्मा के साथ हमारा सच्चा प्यार पैदा हो जाता है। सो जब तक हमें वह सच्चा प्रेम और प्यार नहीं मिलता, इस झूठी दुनिया से हमारा झूठा मोह और प्यार कभी निकल ही नहीं सकता। वह कौन है जो दुनिया की शक्लों और पदार्थों के साथ मोह और प्यार किए बैठा है? वह हमारा मन है। इसलिए आत्मा और परमात्मा के बीच कोई पर्दा है तो वह केवल हमारे मन का पर्दा है, मन की रुकावट है। जिस तरह आत्मा परमात्मा का अंश है, इसी तरह हमारा मन भी कोई छोटी चीज नहीं है, वह ब्रह्म की अंश है, त्रिकुटी का रहने वाला है। लेकिन विषय विकारों, शराबों, कबाबों, इंद्रियों के भोगों में फंसकर अपने आप को, अपने असल को भूल बैठा है। और जो जो कर्म मन इन इंद्रियों के वश में होकर करता है, उसका नतीजा हमारी आत्मा को भी भोगना पड़ता है। सो जब तक हमारी आत्मा मन का साथ नहीं छोड़ती, इसे ना तो कभी अपने आप का पता लग सकता है और ना कभी अपने असल का पता लग सकता है। मन का साथ आत्मा तब छोड़ सकती है जब मन अपने निज धाम ब्रह्म या त्रिकुटी में पहुंच जाता है। हमें जो भी कोशिश करनी है, मार्ग अपनाना है, उपाय करना है, वह आत्मा और मन की गांठ खोलने का करना है, मन को उसके ठिकाने यानी ब्रह्म या त्रिकुटी पहुंचाने का करना है। दुनिया के जीव हजारों ही युक्तियों और तरीकों से मन को वश करने की कोशिश करते हैं। जप तप करते हैं, पूजा पाठ करते हैं, दान पुण्य करते हैं, घर बार छोड़कर जंगलों और पहाड़ों में छिपकर बैठ जाते हैं। हठ कर्मों और संयम के द्वारा जबरदस्ती मन को दुनिया से निकालने की, दुनिया से उदासीन करने की कोशिश करते हैं। आगे जाकर हमारा मन कहीं जुड़ता नहीं, वापस आकर दुनिया में भटकना शुरू कर देता है। महात्मा समझाते हैं कि जबरदस्ती मन को वश में करना इसी प्रकार है जिस प्रकार सुलगते हुए कोयले को राख के नीचे दबा देना है। देखने में आता है कि आग बुझी हुई है, पर जब भोगों की आंधी उठती है, विषय विकारों की लहरें उठती हैं, वह सारी राख उड़ जाती है और सुलगते हुए कोयले फिर धधक उठते हैं। हजूर महाराज जी समझाया करते थे कि जबरदस्ती मन को वश में करना इसी तरह है जिस तरह एक सांप को पिटारी में बंद कर देना है या एक बदमाश को पुलिस के हवाले कर देना है। जब तक सांप पिटारी में बंद है, हम उसके डंक से बचे हुए हैं। इसी तरह जब तक बदमाश पुलिस की हिरासत में रहता है, तब तक हम उसकी शरारतों से बचे रहते हैं। लेकिन जब पुलिस उसको छोड़ देती है, वह फिर वही शरारतें शुरू कर देता है। अगर हम उसे पुलिस के हवाले करने के बजाय समझा बुझाकर भला और नेक इंसान बना लें, तो सदा के लिए उसकी शरारतों से बच जाते हैं। गुरु नानक साहब फरमाते हैं कि हठ कर्मों के द्वारा, डिसिप्लिन के द्वारा हम थोड़ी देर का आराम या राहत जरूर हासिल कर लेते हैं और अपने मन पर हावी हो जाते हैं, लेकिन मन जब फिर जोर मारता है तो उसी तरह उंगलियों पर नचाने लगता है। अगर मन को वश में करना है तो हमें पहले इसकी आदत और इसके स्वभाव के बारे में जान लेना चाहिए। हम देखते हैं कि हमारा मन लज्जत का आशिक है, एक चीज से प्यार करता है। अगर उस चीज से बढ़कर कोई दूसरी चीज दिखाई देती है तो हमारा मन पहली को छोड़कर दूसरी के पीछे भागना शुरू कर देता है। दुनिया का कोई भी प्यार हमारे मन को हमेशा के लिए पकड़कर स्थिर नहीं रख सकता। वह शक्लें और पदार्थ जिनके लिए कभी अपना जीवन तक कुर्बान करने की बात सोचते थे, फिर कभी ऐसा समय आ जाता है कि मन उनको देखना तक पसंद नहीं करता। सो हमारा मन तो लज्जत का आशिक है। जब तक हमें दुनिया के प्यार से ऊंचा और सच्चा प्यार नहीं मिलता, ये दुनिया का प्यार और मोह छोड़ने के लिए कभी तैयार नहीं होता। वह कौन सी लज्जत और प्यार है जिसको प्राप्त करके ही हमारा मन दुनिया का मोह और प्यार छोड़ेगा? गुरु साहब फरमाते हैं, गुर शब्दी सच्ची लेव लाए, कि जब गुरमुखों के जरिए शब्द के साथ ख्याल को जोड़ लेते हैं, शब्द को पकड़ लेते हैं, शब्द की लज्जत हासिल कर लेते हैं, तब इस झूठी दुनिया से हमारा झूठा प्यार हट जाता है और हमारे अंदर सच्चे परमात्मा के लिए सच्चा प्यार पैदा हो जाता है। क्योंकि उस शब्द की लज्जत इतनी ऊंची और पवित्र है कि उस लज्जत को पाकर अपने आप हमारा मन विषय विकारों की लज्जत को छोड़ देता है। जिसे हीरे जवाहरात मिल जाते हैं, वह फिर कौड़ियों के पीछे दर दर ठोकरे नहीं खाता। लड़कियां गुड़ियों से तभी तक खेलती हैं जब तक उनकी शादी नहीं हो जाती। गुरु साहब फरमाते हैं कि जब हमें सच्चे परमात्मा का सच्चा प्यार मिल जाएगा, इस दुनिया से हमारा झूठा मोह अपने आप ही निकल जाएगा। और जब भी सच्चे परमात्मा का सच्चा प्यार मिलेगा, गुर शब्दी गुरमुखों के जरिए मिलेगा। हमारे जितने भी मजहब हैं, उन सब के रीति रिवाज अलग अलग हैं, लेकिन रूहानियत या सच्चाई सब मजहबों की तय पर एक ही है। हर एक महात्मा हमारे अंदर उसी रूहानियत का शौक या प्यार पैदा करने के लिए आता है। उस एक ही रूहानियत को महात्माओं ने अलग अलग कौमों, मजहबों, मुल्कों में बैठकर अलग अलग लफ्जों के जरिए समझाने की कोशिश की है। गुरु नानक साहब उसे गुर की बाणी, धुर की बाणी, सच्ची बाणी, शब्द नाम, अमर हुक्म, अकथ कथा, हरि कीर्तन कहकर बयान करते हैं। उसी को गुरु साहब निर्मल नाद कहते हैं। ऋषि मुनि उसे आकाशवाणी, राम नाम, राम धुन या कई और लफ्जों से याद करते हैं। मुसलमान फकीरों ने उसको कलमा, बांगे आसमानी, कलामे इलाही, नदाए सुल्तानी कहकर याद किया है। ईसा ने उसे वर्ड या लोगोस कहकर याद किया है। हमारा लफ्जों के साथ कोई बहस मुबासा नहीं है। आप किसी भी शब्द के द्वारा उस रूहानियत की बात कर सकते हैं। सवाल तो सिर्फ इतना है कि हमें अपनी देह, अपने शरीर के अंदर रूहानियत की लज्जत किस तरह हासिल करनी है, उस रूहानियत के साथ अपना ख्याल किस तरह जोड़ना है। हमारा रूहानी सफर पैरों के तलवों से लेकर सिर की चोटी तक है। इस सफर की दो मंजिलें हैं, एक आंखों तक है, दूसरी आंखों से ऊपर है। हमारी देह के अंदर जो आत्मा और मन की बैठक है, वह सबकी आंखों के पीछे है। उसको कोई तिल कहता है, कोई शिव नेत्र कहता है, कोई दिव्य चक्षु कहता है, कोई घरदर कहता है, कोई मुक्ति का दरवाजा कहता है। हर एक का ख्याल इस नुक्ते से उठता है और नौ द्वारों के द्वारा सारी दुनिया में फैल जाता है। ये नौ दरवाजे हैं, दो आंखें, दो कान, दो नाक के सुराख, एक मुंह और नीचे दो इंद्रियों के सुराख। इन नौ दरवाजों के द्वारा हमारा ख्याल सारी दुनिया में फैला हुआ है। आप देखें, हमें यहाँ बैठे कभी बच्चों का ख्याल आता है, कभी घर के कारोबार का ख्याल आता है, कभी दुकान के ग्राहकों का ख्याल आता है, तो कभी मित्रों दोस्तों के बारे में सोचते हैं। हमारा मन कभी निश्चल नहीं बैठता। हम हर समय किसी न किसी चीज की सोच और विचार में लगे ही रहते हैं। अगर कोई चीज हम भूल जाएं तो उसे याद करना हो तो हमारा हाथ अपने आप इस नुक्ते को पकड़कर बैठ जाता है। कभी किसी भूली हुई चीज को याद करने के लिए हम टांगों या पैरों पर हाथ नहीं मारते। इस जगह का हमारे सोचने के साथ बड़ा गहरा संबंध है। सो हमारा ख्याल तीसरे तिल से उतरकर सारी दुनिया के अंदर फैला हुआ है। हमें गुरुमुखों की बताई हुई युक्ति और तरीके के अनुसार इस फैले हुए ख्याल को वापस लाकर समेट कर इसी नुक्ते पर एकाग्र करना है। गुरु अमरदास जी समझाते हैं, नौ दर ठाके तावत रहाए, दसवें निज कर वासा पाए, ओथे अनहद शब्द वजह दिन राती गुरमती शब्द सुनावणिया। कि जिस समय तुम नौ दरवाजों में से ख्याल को निकाल कर आंखों के पीछे लाओगे, तुम अपने घर के दरवाजे पर पहुंच जाओगे। उस घर के दरवाजे की यही निशानी हमेशा याद रखनी है कि उस नुक्ते पर हर समय अनहद शब्द धुनकारें दे रहा है। वह मीठी से मीठी, सुरीली से सुरीली आवाज जो मालिक की दरगाह से आ रही है, वह चोरों के अंदर भी है, ठगों के अंदर भी है, साधुओं संतों महात्माओं के अंदर भी है। वहां कभी किसी कौम, मजहब, मुल्क का सवाल ही पैदा नहीं होता। आप हिंदू होकर अंदर जाएं, सिख ईसाई होकर अंदर जाएं, जो खुशकिस्मत अपने ख्याल को आंखों के पीछे इकट्ठा करता है, उसका ख्याल शब्द के साथ जुड़ जाता है। उसी आवाज को महात्मा आकाशवाणी, राम नाम, राम धुन कहते हैं। इसी को गुरु साहेब धुर की बाणी, गुर की बाणी, अमर हुक्म, अकथ कथा कहते हैं। उसी को इस जगह शब्द या नाम कहकर समझा रहे हैं। उस शब्द या नाम की लज्जत इतनी ऊंची और पवित्र है कि इसे पाकर हमारा मन अपने आप दुनिया से हट जाता है। गुरु रामदास जी समझाते हैं, हर हर नाम अमृत रस मीठा। भाई, वह जो नाम है वह अमृत है, उसकी लज्जत बहुत ही मीठी है। मीठी इसलिए कहते हैं कि अभी जो लज्जतें मीठी लगती हैं, वह सब हमें फीकी लगनी शुरू हो जाती हैं। जिसको मीठी चीज मिल जाती है, उसका ध्यान फीकी चीज की तरफ नहीं जाता। इसलिए महात्मा हमें उपदेश देते हैं कि शरीर के अंदर जाकर उस शब्द या नाम की खोज करो। ज्यों ज्यों उस शब्द या नाम का प्यार हमारे अंदर पैदा होता है, त्यों त्यों दुनिया के पदार्थों से डिटैचमेंट पैदा होनी शुरू हो जाती है। इस दुनिया का झूठा मोह और प्यार निकलना शुरू हो जाता है। मालिक का सच्चा मोह और सच्चा प्यार हमारे अंदर पैदा होना शुरू हो जाता है। परमात्मा का प्यार और भक्ति ही हमें वापस मालिक के साथ मिला सकती है।
साचे वण जह सच संग रे सच वापार करावण्या।
जो गुरमुख लोग शब्द या नाम की कमाई करके अपने अंदर से होमे या अहम की रुकावट को दूर कर लेते हैं, मोह या प्यार के दायरे के पार चले जाते हैं, अब गुरु साहब उनकी महिमा करते हैं कि वह सच का ही व्यापार करते हैं। वह आप भी सच्चे शब्द या सच्चे नाम की कमाई करते हैं और हमारे अंदर भी उस सच्चे शब्द या नाम की कमाई का शौक पैदा करते हैं। वह शब्द सच्चा, प्योर और पवित्र है। जब हम उसके साथ जुड़ जाते हैं, हम भी सच्चे और पवित्र हो जाते हैं। गुरु अमरदास जी की बाणी है, मुक्ते सेवे मुक्ता होवे, होमे ममता सब देखोवे। जो लोग शब्द या नाम की कमाई करके अपने अंदर से होमे और ममता की रुकावट को दूर कर चुके हैं, वह मुक्ति प्राप्त कर लेते हैं। जब हम उनकी संगत करते हैं, उनके कहने के अनुसार शब्द या नाम की कमाई करके अपने अंदर से अपने आप को निकाल लेते हैं, होमे और ममता की रुकावट दूर कर लेते हैं, तो हम भी मुक्ति प्राप्त कर लेते हैं। हमारा भी जन्म मरण के दुखों से छुटकारा हो जाता है। सो गुरमुख लोग हमेशा शब्द या नाम की कमाई करते हैं, शब्द या नाम की महिमा करते हैं और हमारे ख्याल को भी उस शब्द या नाम की तरफ ले जाते हैं।
हो वारी जियो वारी हर गुण अन दिन गावण्या।
अब गुरु साहब फरमाते हैं कि जब भी झूठी दुनिया से हमारा झूठा मोह या प्यार निकलेगा, हमेशा शब्द या नाम की कमाई के जरिए ही निकलेगा। और इस शब्द की कमाई करने की युक्ति का पता गुरुमुखों से लगता है, संतों महात्माओं से लगता है। गुरु अर्जन देव जी की बाणी है, जिसका ग्रह तिन दिया ताला कुंजी गुरसों पाई, कि भाई जिस परमात्मा ने हमें पैदा किया है, उसने नाम रूपी दौलत हमारे अंदर हमारे लिए ही रखकर उसका भेद गुरमुखों और संतों महात्माओं के हवाले कर दिया है। गुरमुख लोग घोलकर हमारे अंदर कुछ नहीं डालते, वह दौलत परमात्मा ने हमारे अंदर हमारे लिए ही रखी है। उन्होंने इशारा करना है, तरीका बतलाना है कि किस युक्ति से हमें अपने ख्याल को शब्द के साथ जोड़ना है, नाम के साथ जोड़ना है। हजूर महाराज जी बड़ी सुंदर मिसाल दिया करते थे कि सबको पता है कि दूध के अंदर घी होता है, लेकिन जब तक युक्ति का पता ना चले, तरीका पता ना चले, हम कभी भी दूध से घी हासिल नहीं कर सकते। जब कोई युक्ति बतलाता है कि किस तरीके से दही जमाना है, किस तरह से दही को मथ कर मक्खन निकालना है, फिर मक्खन को गर्म करके छाछ को अलग कर देना है, तब उसी दूध में से घी निकल आता है। घी को दूध में से ही निकलना है, बाहर से कहीं नहीं निकलना। लेकिन जब तक कोई युक्ति बतलाने वाला नहीं मिलता, उस दूध के घी का हमें क्या फायदा हो सकता है। यही गुरु साहब समझाते हैं कि गुरमुखों के जरिए युक्ति पता चलती है, शब्द या नाम की कमाई करने का साधन और तरीका पता लगता है, और फिर झूठी दुनिया से हमारा झूठा मोह और प्यार निकलता है, सच्चे परमात्मा के साथ सच्चा प्यार पैदा हो जाता है। इसलिए आप फरमाते हैं, हम अपने सतगुरु पर कुर्बान जाते हैं, बलिहार जाते हैं, अपने आप को उन पर निछावर करते हैं, उनकी संगत में जाकर हर गुण अन दिन गावण्या। हम हमेशा के लिए हरि के गुण गाने शुरू कर देते हैं। हरि के गुण गाने का क्या मतलब है कि हम शब्द या नाम के साथ जुड़ जाते हैं। इससे पहले हम दुनिया के गुण गाने में लगे हुए थे, दुनिया के धंधों, दुनिया के प्यार में फंसे हुए थे, लेकिन जब गुरमुखों की संगत मिलती है, उनकी तालीम के अनुसार हम दुनिया के गुण गाने छोड़ देते हैं और उस परमात्मा के गुण गाने लग जाते हैं। उस परमात्मा के साथ हमारा मोह या प्यार पैदा हो जाता है। गुरु अमरदास जी फरमाते हैं, गोविंद गोविंद कहें दिन राती गोविंद गुण शब्द सुनावणिया, कि भाई दिन रात गोविंद गोविंद कहने से तुम्हें कभी गोविंद नहीं मिल सकता। अगर तुम गोविंद के गुण गाना चाहते हो तो इसके लिए अंदर से शब्द को सुनना पड़ता है, नाम के साथ ख्याल को जोड़ना पड़ता है। जब तक शब्द या नाम के साथ ख्याल नहीं जुड़ता, जब तक हम गोविंद के गुण नहीं गाते, तब तक तो दुनिया के ही गुण गाने में लगे हुए हैं। सो गुरु साहब फरमाते हैं कि गुरुमुखों की संगत में जाकर इस दुनिया का गुणगान छोड़कर शब्द या नाम के साथ ख्याल को जोड़ना चाहिए।
हों तेरा तू ठाकुर मेरा, शब्द वड्याई देवनिया।
गुरु साहब समझाते हैं कि जब हम हरि के गुण गाने लगते हैं, फिर हमें समझ आ जाती है कि हम परमात्मा के दास हैं, नौकर हैं, चाकर हैं, गुलाम हैं, और वह परमात्मा हमारा स्वामी है, मालिक है, हमारा सब कुछ है। हमें ये गौरव मिल जाता है कि हम दास हो गए हैं, परमात्मा हमारा स्वामी बन गया, हमारा मालिक बन गया। आप समझाते हैं शब्द वड्याई देवणिया, ये बढ़ाई तब मिलती है जब शब्द की कमाई करते हैं, नाम की कमाई करते हैं। फिर हमें अपनी असलियत का पता लगता है, परमात्मा की असलियत का पता लगता है, और इस दुनिया से हमारा ख्याल निकलकर परमात्मा के साथ जुड़ जाता है। गुरु साहब फरमाते हैं कि जब भी हमें ये गौरव हासिल होगा, केवल शब्द की कमाई करके, नाम की कमाई करके ही प्राप्त होगा। शब्द की कमाई के द्वारा ही हमारा ख्याल दुनिया के मोह या प्यार से निकलेगा और हम अपने आप को परमात्मा के चाकर और दास समझने लगेंगे, परमात्मा के आज्ञाकारी सेवक समझने लगेंगे।
वेला वक्त सब सुहाया, जित सच्चा मेरे मन पाया।
अब गुरु साहब फरमाते हैं कि आम तौर पर जब भी दुनिया का कोई काम शुरू करते हैं तो हम सोचते हैं कि कौन सी घड़ी शुभ है, कौन सा मुहूर्त अच्छा है, कौन सा समय ठीक है ताकि शुभ वक्त में कोई कामकाज आरंभ किया जाए। लेकिन गुरु साहब समझाते हैं कि सारे ही वक्त परमात्मा के बनाए हुए हैं, सारे ही समय शुभ हैं, कोई भी वक्त अशुभ नहीं है। ये हमारा मन ही बुरा है जो कि हमें परमात्मा की भक्ति की तरफ नहीं जाने देता, इन वहमों और भ्रमों में फंसा रखता है। गुरु साहब कहते हैं कि वही समय, वही घड़ी शुभ है, वही मुहूर्त अच्छा है जिस समय हमारा मन परमात्मा की भक्ति की तरफ जाता है, परमात्मा के प्यार की तरफ जाता है। आपके समझाने का भाव है कि नाम की कमाई करने के लिए जो भी समय मिलता है उसी से लाभ उठाना चाहिए। सुबह समय मिलता है, सुबह भजन में बैठो। दोपहर में समय मिलता है, दोपहर भजन में बैठो। शाम को समय मिलता है, शाम को भजन में बैठो। जो भी घड़ी दो घड़ी परमात्मा की याद में लगाएंगे वही हमारे लेखे में लिखी जाएगी, उसका हमें हर एक को लाभ प्राप्त होना है। पर सुबह के वक्त के बहुत से ऐसे फायदे हैं जो हमें किसी दूसरे समय में नहीं मिल सकते। सुबह जिस वक्त हम सोकर उठते हैं हमारा शरीर ताज़ा और स्वस्थ होता है, पिछले दिन की सारी थकावट दूर हो चुकी होती है, पिछले दिन के सारे झगड़े भी हम भूल चुके होते हैं। फिर गलियों मोहल्लों में भी खामोशी होती है, घर के अंदर भी बच्चे सोए रहते हैं, ना किसी मेहमान के आने का खतरा है, ना किसी टेलीफोन के आने का डर। और फिर जब हम दिन शुरू करने लगे हैं तो क्यों ना मालिक का नाम लेकर शुरू करें, ताकि उसका सुरूर और खुशी सारा दिन हमारे साथ रहे और हम उस खुशी और आनंद में अपना सारा दिन व्यतीत करें। अगर दोपहर को भजन में बैठेंगे तो गलियों मोहल्लों में शोर शुरू हो जाता है, उस समय कोई ना कोई दोस्त पास आकर बैठ जाएगा, फिर बच्चों का कामकाज करना है, दुकानों का कामकाज करना है, चौके चूल्हे का भी कामकाज करना है। वह समय हम अपनी इच्छा के अनुसार नहीं निकाल सकते। अगर शाम को भजन में बैठेंगे तो सारे दिन कामकाज करके शरीर थका होता है, जल्दी नींद आ जाती है, फिर सारे दिन के झगड़े आंखों के सामने आ जाते हैं। जो काम सुबह घंटे डेढ़ घंटे में बनना था शाम को उसी के लिए 3-4 घंटे चाहिए, और इतना समय किसके पास होता है। इसलिए महात्मा कहते हैं कि सुबह अमृत वेले भजन के लिए बैठना चाहिए, लेकिन अगर सुबह समय नहीं मिलता तो इसका ये मतलब नहीं कि परमात्मा की भक्ति के लिए और कोई समय है ही नहीं। गुरु साहब हमारे मन को इन भ्रमों और संकल्पों से निकालते हैं कि वही घड़ी, वही मुहूर्त, वही वेला और वही समय शुभ है जिस समय हमारा मन परमात्मा की भक्ति की तरफ जाता है, शब्द या नाम की कमाई की तरफ जाता है।
सच्चे सेविए सच वडियाई, गुर कृपा ते सच पावणिया।
आप समझाते हैं कि वह परमात्मा सच्चा और पवित्र है, वह कभी जन्म मरण के दुखों में नहीं आता। जो कुछ हम आंखों से देखते हैं सब नष्ट हो जाएगा, फना हो जाएगा, पर इनको पैदा करने वाला वह अकाल पुरुष परमेश्वर परमात्मा कभी नष्ट और फना नहीं होता। जपजी साहब की पहली पौड़ी में आता है, आद सच जुगाद सच है भी सच, नानक होसी भी सच। सच का मतलब है जो कभी नष्ट नहीं होता, फना नहीं होता। गुरु नानक साहब फरमाते हैं, सबसे पहले वह परमात्मा था, सब कुछ उस परमात्मा ने पैदा किया है। जो कुछ भी आंखों से देखते हैं वह सब कुछ नाश और फना हो जाएगा, लेकिन इसको पैदा करने वाला वह परमात्मा कभी नाश और फना नहीं होता। वह सतयुग में भी था, त्रेता और द्वापर में भी था, अब भी है और आगे भी वही परमात्मा रहेगा। ये नहीं कि पहले गद्दी किसी और के पास थी और आगे किसी और के पास चली जाएगी। गुरु साहब फरमाते हैं कि वह परमात्मा सच्चा है, उसकी भक्ति भी सच्ची है, उसका प्रेम भी सच्चा है। ये दुनिया झूठी है, इस दुनिया का प्यार और भक्ति भी झूठी है। आप फरमाते हैं सच्चे सेविये सच वड्याई, कि जब सच्चे परमात्मा की भक्ति करते हैं तो फिर सच्ची बड़ाई मिलती है। ये दुनिया झूठी है, इसकी बढ़ाई भी झूठी है। हिस्ट्री पढ़कर देख लें, कभी तो ये दुनिया के लोग हमें सिर पर उठाए फिरते हैं, जुलूस निकालते हैं, जय जयकार करते हैं, और फिर वही दुनिया के लोग पैरों के नीचे रौंदना शुरू कर देते हैं, फांसी के तख्ते पर चढ़ा देते हैं, गोलियों का निशाना बना देते हैं, रातों रात राजे पलट जाते हैं, लीडरों और नेताओं को जेल खानों के अंदर कैद कर लिया जाता है। सो इस दुनिया का हम क्या विश्वास कर सकते हैं? इसकी मान बढ़ाई भी झूठी है और ये खुद भी झूठी है। गुरु साहब कहते हैं वह परमात्मा सच्चा है, और जो वह अपने साथ मिलने की बढ़ाई देता है वह भी सच्ची है, पर ये जो सच्चे सेविये की सच वड्याई है वह प्राप्त किस तरह होती है? गुरु कृपा ते सच पावणिया, जब हमारे ऊपर गुरुमुखों की कृपा और बख्शिश हो जाती है, जब वे हमारे ख्याल को उस शब्द या नाम के साथ जोड़ देते हैं, तभी हम सच्चे परमात्मा की सच्ची बढ़ाई हासिल करने के काबिल होते हैं।
पाओ पोजन सत गुर तुठे पाए, अनरस चूके हर रस मन वसाए।
आप समझाते हैं कि हमारा मन संगत और सोबत का असर बहुत जल्दी लेता है। शराब पीने वाले के पास बैठो, शराब पीने की आदत पैदा हो जाएगी। चोरों की संगत करो तो चोरी की आदत पैदा हो जाएगी। मालिक के भक्तों और प्यारों की संगत करेंगे तो उनको देखकर हमारे अंदर भी मालिक की भक्ति का शौक और प्यार पैदा हो जाएगा। आप फरमाते हैं कि जब संतों महात्माओं की संगत करते हैं तो हमारे मन में संतोष आ जाता है। अन रस चूक के हर रस मन वसाए, कि हमारे मन से दुनिया के रस निकल जाते हैं, शब्द या नाम का रस आ जाता है। फिर हम दुनिया की चीजों के पीछे नहीं दौड़ते, दुनिया की शक्लों और पदार्थों के लिए नहीं तड़पते। हम उस अमृत को पीकर अमर हो जाते हैं। हमारा दुनिया के जन्म मरण से हमेशा के लिए छुटकारा हो जाता है।
सच संतोख सहज सुख बाणी, पूरे गुरे ते ਸਾਵਣਿਆ।
ਆਪ ਫਰਮਾਤੇ ਹੈਂ ਕਿ ਜਿਸ ਵਕਤ ਹਮ ਗੁਰਮੁਖੋਂ ਕੀ ਸੰਗਤ ਮੇਂ ਆਕਰ ਉਸ ਨਾਮ ਕੇ ਰਸ ਕੋ ਪੀਨੇ ਲਗ ਜਾਤੇ ਹੈਂ, ਫਿਰ ਹਮਾਰਾ ਉਸ ਵਾਣੀ ਕੇ ਸਾਥ ਖਿਆਲ ਜੁੜ ਜਾਤਾ ਹੈ। ਕੌਨ ਸੀ ਵਾਣੀ ਕੇ ਸਾਥ? ਜੋ ਸੱਚ ਹੈ, ਜੋ ਕਭੀ ਨਾਸ਼ ਜਾਂ ਫਨਾ ਨਹੀਂ ਹੋਤੀ, ਜਿਸਨੇ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਕੀ ਰਚਨਾ ਕੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਾਣੀ ਕੇ ਆਧਾਰ ਪਰ ਸਾਰੇ ਖੰਡ ਬ੍ਰਹਿਮੰਡ ਖੜੇ ਹੈਂ, ਵਹਿ ਵਾਣੀ ਕੈਸੀ ਹੈ? ਸੰਤੋਖ ਕਿ ਅਭੀ ਜੋ ਮਨ ਮੇਂ ਭਟਕਣ ਲਗੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਤੜਪ ਲਗੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਜਬ ਉਸ ਵਾਣੀ ਕੇ ਸਾਥ ਹਮਾਰਾ ਮਨ ਜੁੜ ਜਾਤਾ ਹੈ, ਤੋ ਮਨ ਮੇਂ ਸੰਤੋਸ਼ ਔਰ ਸਬਰ ਆ ਜਾਤਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਫਰਮਾਤੇ ਹੈਂ ਸਹਿਜ ਕਿ ਉਸ ਵਾਣੀ ਕੋ ਪਕੜ ਕਰ ਹੀ ਸਹਿਜ ਕੀ ਅਵਸਥਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਤੀ ਹੈ, ਹਮ ਮਨ ਔਰ ਮਾਇਆ ਕੇ ਦਾਇਰੇ ਸੇ ਪਾਰ ਚਲੇ ਜਾਤੇ ਹੈਂ। ਵਹਿ ਵਾਣੀ ਸੁਖ ਦੇਣੇ ਵਾਲੀ ਹੈ। ਜਬ ਤੱਕ ਹਮਾਰਾ ਮਨ ਦੁਨੀਆ ਕੇ ਸਾਥ ਜੁੜਾ ਹੁਆ ਹੈ, ਹਮ ਦੁੱਖੋਂ ਔਰ ਮੁਸੀਬਤੋਂ ਮੇਂ ਫਸੇ ਹੋਏ ਹੈਂ। ਜਬ ਉਸ ਵਾਣੀ ਕੇ ਸਾਥ ਖਿਆਲ ਜੁੜ ਜਾਤਾ ਹੈ, ਤੋ ਸੁਖ ਹਾਸਿਲ ਕਰ ਲੇਤੇ ਹੈਂ, ਸ਼ਾਂਤੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਲੇਤੇ ਹੈਂ। ਯੇ ਕੌਨ ਸੀ ਵਾਣੀ ਹੈ ਜਿਸ ਕੀ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਇਤਨੀ ਬੜਾਈ ਕਰਤੇ ਹੈਂ, ਮਹਿਮਾ ਕਰਤੇ ਹੈਂ? ਜਿਸ ਵਾਣੀ ਨੇ ਦੁਨੀਆ ਕੀ ਰਚਨਾ ਕੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਕੇ ਆਧਾਰ ਪਰ ਖੰਡ ਬ੍ਰਹਿਮੰਡ ਖੜੇ ਹੈਂ, ਜੋ ਵਾਣੀ ਹਮਾਰੇ ਸਭ ਕੇ ਅੰਦਰ ਹੈ, ਜੋ ਦਿਨ ਰਾਤ ਸਭ ਕੇ ਅੰਦਰ ਧੁਨਕਾਰੇ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ, ਵਹਿ ਚੋਰੋਂ, ਠੱਗੋਂ, ਸਾਧੂਓਂ ਔਰ ਸੰਤੋਂ ਮਹਾਤਮਾਓਂ ਸਭ ਕੇ ਅੰਦਰ ਹੈ। ਵਹਾਂ ਕਿਸੀ ਕੌਮ, ਮਜ਼ਹਬ ਔਰ ਮੁਲਕ ਕਾ ਸਵਾਲ ਹੀ ਪੈਦਾ ਨਹੀਂ ਹੋਤਾ। ਹਿੰਦੂ ਹੋ ਕਰ ਅੰਦਰ ਜਾਓ, ਸਿੱਖ ਈਸਾਈ ਹੋ ਕਰ ਅੰਦਰ ਜਾਓ, ਜੋ ਵੀ ਭਾਗਯਵਾਨ ਖੁਸ਼ਕਿਸਮਤ ਆਂਖੋਂ ਕੇ ਪਿੱਛੇ ਖਿਆਲ ਇਕੱਠਾ ਕਰਤਾ ਹੈ, ਉਸਕਾ ਖਿਆਲ ਉਸ ਵਾਣੀ ਕੇ ਸਾਥ ਜੁੜ ਜਾਤਾ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਉਸ ਵਾਣੀ ਕੀ ਮਹਿਮਾ ਕਰਤੇ ਹੈਂ, ਬਾਣੀ ਵੱਜੀ ਚਹੋਂ ਜੁਗੀ, ਸੱਚੋ ਸੱਚ ਸੁਣਾਏ, ਕਿ ਵਹਿ ਵਾਣੀ ਚਾਰੋਂ ਯੁਗੋਂ ਸੇ ਚਲੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਤਯੁਗ ਮੇਂ ਵਹੀ ਵਾਣੀ ਥੀ, ਦੁਆਪਰ ਔਰ ਤ੍ਰੇਤਾ ਯੁਗ ਮੇਂ ਵੀ ਵਹੀ ਵਾਣੀ ਥੀ, ਅਬ ਵੀ ਵਹੀ ਵਾਣੀ ਹੈ ਔਰ ਆਗੇ ਵੀ ਵਹੀ ਵਾਣੀ ਰਹੇਗੀ। ਯੇ ਨਹੀਂ ਕਿ ਪਹਿਲੇ ਵਹਿ ਵਾਣੀ ਕੁਛ ਔਰ ਥੀ ਔਰ ਆਗੇ ਜਾ ਕਰ ਕੁਛ ਔਰ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਨਾ ਵਹਿ 400-500 ਸਾਲ ਪੁਰਾਣੀ ਹੈ, ਨਾ ਵਹਿ 1000 ਸਾਲ ਪੁਰਾਣੀ ਹੈ, ਨਾ ਵਹਿ ਪੰਜਾਬੀ ਮੇਂ ਲਿਖੀ ਜਾਤੀ ਹੈ, ਨਾ ਵਹਿ ਹਿੰਦੀ ਔਰ ਫਾਰਸੀ ਮੇਂ ਲਿਖੀ ਜਾਤੀ ਹੈ। ਹਮ ਸੰਸਾਰਿਕ ਜੀਵ ਤੋਂ ਯੂੰ ਹੀ ਭਾਸ਼ਾਓਂ ਕੇ ਝਗੜੋਂ ਮੇਂ ਉਲਝੇ ਬੈਠੇ ਹੈਂ। ਵਹਿ ਵਾਣੀ ਤੋ 2400 ਘੰਟੇ ਹਮਾਰੇ ਸਭ ਕੇ ਅੰਦਰ ਆਂਖੋਂ ਕੇ ਪਿੱਛੇ ਧੁਨਕਾਰ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਫਰਮਾਤੇ ਹੈਂ, ਅੰਤਰ ਜੋਤ ਨਿਰੰਤਰ ਬਾਣੀ ਸਾਚੇ ਸਾਹਿਬ ਸਿਓ ਲਿਵਲਾਈ, ਕਿ ਹਰ ਇੱਕ ਕੇ ਅੰਦਰ ਆਂਖੋਂ ਕੇ ਪਿੱਛੇ ਜੋਤੀ ਜਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਸ ਜੋਤੀ ਕੇ ਅੰਦਰ ਸੇ ਮੀਠੀ ਔਰ ਸੁਰੀਲੀ ਆਵਾਜ਼ ਜਾਂ ਬਾਣੀ ਉੱਠ ਰਹੀ ਹੈ, ਜੋ ਉਸ ਬਾਣੀ ਕੋ ਪਕੜਤਾ ਹੈ, ਸਾਚੇ ਸਾਹਿਬ ਸਿਓ ਲਿਵਲਾਈ, ਉਸਕਾ ਦੁਨੀਆ ਸੇ ਮੋਹ ਔਰ ਪਿਆਰ ਨਿਕਲ ਜਾਤਾ ਹੈ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਕੇ ਸਾਥ ਮੋਹ ਜਾਂ ਪਿਆਰ ਪੈਦਾ ਹੋ ਜਾਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ਫਰਮਾਤੇ ਹੈ, ਬਾਣੀ ਗੁਰੂ, ਗੁਰੂ ਹੈ ਬਾਣੀ, ਵਿੱਚ ਬਾਣੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਸਾਰੇ, ਕਿ ਵਹਿ ਬਾਣੀ ਹਮਾਰਾ ਗੁਰੂ ਹੈ, ਵਹਿ ਸ਼ਬਦ ਜਾਂ ਨਾਮ ਹਮਾਰਾ ਗੁਰੂ ਹੈ। ਗੁਰਮੁਖੋਂ ਕਾ ਅਸਲੀ ਸਰੂਪ ਸ਼ਬਦ ਜਾਂ ਨਾਮ ਹੋਤਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਵਕਤ ਵਹਿ ਸ਼ਬਦ ਸਰੂਪ ਹੋ ਕਰ ਦੇਹ ਧਾਰਨ ਕਰਤੇ ਹੈ, ਤੋ ਦੇਹ ਸਰੂਪ ਗੁਰੂ ਬਣ ਜਾਤੇ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਜੋ ਚੀਜ਼ ਉਨਕੇ ਦੇਹ ਮੇਂ ਗੁਰੂ ਬਨਤੀ ਹੈ, ਵਹਿ ਸ਼ਬਦ ਹੈ, ਨਾਮ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਐਸੇ ਮਹਾਤਮਾ ਕੇ ਬਾਰੇ ਮੇਂ ਈਸਾ ਮਸੀਹ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ, ਐਂਡ ਦ ਵਰਲਡ ਮੇਡ ਫਲੈਸ਼, ਕਿ ਜਬ ਵੀ ਵਹਿ ਸ਼ਬਦ ਸਰੀਰ ਧਾਰਨ ਕਰਤਾ ਹੈ, ਤੋ ਬਾਹਰ ਵਹਿ ਹਮਾਰਾ ਰਹਿਨੁਮਾ ਔਰ ਰਹਿਬਰ ਬਨ ਜਾਤਾ ਹੈ। ਜਬ ਹਮ ਆਪਣੇ ਖਿਆਲ ਕੋ ਅੰਦਰ ਇਕੱਠਾ ਕਰਤੇ ਹੈ, ਤੋ ਵਹਿ ਸ਼ਬਦ ਯਾ ਵਰਡ ਹਮਾਰਾ ਗੁਰੂ ਬਨ ਜਾਤਾ ਹੈ। ਸੋ ਹਰ ਇੱਕ ਮਹਾਤਮਾ ਕਾ ਯਹੀ ਅਨੁਭਵ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿਤੇ ਹੈ ਕਿ ਹਮੇਂ ਉਸ ਵਾਣੀ ਕੀ ਖੋਜ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਉਸ ਸ਼ਬਦ ਕੀ ਖੋਜ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਉਸ ਨਾਮ ਕੀ ਖੋਜ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਕਿਸ ਨਾਮ ਯਾ ਸ਼ਬਦ ਕੀ, ਜੋ ਦਿਨ ਰਾਤ ਹਰ ਇੱਕ ਕੇ ਅੰਦਰ ਧੁਨਕਾਰੇ ਦੇ ਰਹਾ ਹੈ।
ਸਤ ਗੁਰ ਨ ਸੇਵਹਿ ਮੂਰਖ ਅੰਧ ਗਵਾਰਾ, ਫਿਰ ਓਏ ਕਿਥੋਂ ਪਾਇਨ ਮੋਖ ਦੁਆਰਾ।
ਆਪ ਸਮਝਾਤੇ ਹੈਂ ਕਿ ਦੁਨੀਆ ਕੇ ਅੰਦਰ ਦੋ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੇ ਇਨਸਾਨ ਹੈ, ਇੱਕ ਗੁਰਮੁਖ ਹੈ, ਦੂਸਰੇ ਮਨਮੁਖ ਹੈ। ਦੋਨੋਂ ਹੀ ਉਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਕੇ ਬਣਾਏ ਹੋਏ ਬੰਦੇ ਹੈ, ਔਰ ਯੇ ਵੀ ਉਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਕੇ ਹਾਥ ਮੇਂ ਹੈ, ਜਿਸੇ ਵਹਿ ਚਾਹਤਾ ਹੈ ਗੁਰਮੁਖ ਬਣਾ ਲੇਤਾ ਹੈ। ਮਹਾਨਤਾ ਕਿਨ ਕੀ ਹੈ? ਕੇਵਲ ਗੁਰਮੁਖੋਂ ਕੀ ਹੈ। ਆਪ ਗੁਰਮੁਖ ਕਿਸ ਕੋ ਕਹਿਤੇ ਹੈ? ਜੋ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਉਸ ਵਾਣੀ ਕੇ ਸਾਥ ਖਿਆਲ ਕੋ ਜੋੜੇ ਹੋਏ ਹੈ, ਸ਼ਬਦ ਕੇ ਸਾਥ ਖਿਆਲ ਕੋ ਜੋੜੇ ਹੋਏ ਹੈ। ਆਪ ਫਰਮਾਤੇ ਹੈ, ਸਤਿਗੁਰ ਨਾ ਸੇਵੇ ਮੂਰਖ ਅੰਧ ਗਵਾਰਾ, जो गुरमुखों की संगत नहीं करते, उनके उपदेश के अनुसार शब्द या नाम की कमाई नहीं करते, उनकी क्या हालत है? वे मूर्ख हैं, अंधे हैं, ग्वार हैं। क्यों अंधे हैं? क्योंकि परमात्मा ने आंखें भी दी हैं, पर उन्होंने उस चीज को अंदर देखा ही नहीं, हासिल ही नहीं किया। एक तो हम आंखों से अंधे हुए बैठे हैं, दूसरे अंधेरे में फंसे हुए हैं, रास्ता दिखाई नहीं देता, अकेले घबरा रहे हैं और सिर पर पापों का बोझ उठाया हुआ है, अंधकार में भटकते फिर रहे हैं। आप फरमाते हैं, फिर ओए किथों पायन मुख द्वारा, कि जब वे खुद ही अज्ञानता के अंधेरे में फंसे हुए हैं, मुक्ति किस तरह प्राप्त कर सकते हैं? क्योंकि जो मुक्ति का दरवाजा है वह परमात्मा ने आंखों के पीछे लगाया हुआ है। वह तो आंखों से नीचे उतरकर इंद्रियों के भोगों के गुलाम बने बैठे हैं, और जिनकी संगत और सोबत से हमारा ख्याल आंखों के पीछे इकट्ठा होकर शब्द या नाम को पकड़ सकता है, उनकी कभी संगत नहीं करते। सो गुरु साहब उन मनमुखों की अवस्था समझाते हैं। आप कहते हैं कि मनमुख हमेशा अंधकार में ही पैदा होते हैं, अंधकार में ही रहते हैं और अंधकार में ही चले जाते हैं। गुरु अमरदास जी की वाणी है, बिष्टा के कीड़े बिष्टा कमावे, फिर बिष्टा माहे पचावणिया, कि हम गंदगी के कीड़े हैं, गंदगी में ही पैदा होते हैं, गंदगी से ही प्यार करते हैं, गंदगी ही खाते हैं, उसी गंदगी में मर जाते हैं, फिर उसी गंदगी में पैदा हो जाते हैं। सो आप उपदेश देते हैं कि हमें किसी गुरमुख की संगत और सोबत करके उस शब्द की लज्जत हासिल करनी चाहिए, नाम की लज्जत हासिल करनी चाहिए।
मारे मारे जम्मे फेरे फेरे आवे, जमदार चोटा खावणिया।
उन मनमुखों की हालत बयान करते हैं कि वह बार बार मरते हैं और बार बार पैदा होते हैं। हर मौत के बाद उनको धर्मराज के सामने पेश किया जाता है। उनके कर्मों, इच्छाओं, करतूतों, आशाओं और तृष्णाओं के अनुसार जिस जगह वह ठीक समझता है उनको जन्म दे देता है। एक देह के बंधनों से तो बड़ी मुश्किल से छुटकारा हासिल करते हैं, दूसरी देह का कलबूत उनके लिए पहले ही तैयार खड़ा किया होता है। उस कलबूत के अंदर अभी पैदा ही नहीं होते कि मौत फिर आंखों के सामने आकर खड़ी हो जाती है। 10 नंबरियों की तरह हथकड़ी लगी ही रहती है। बार बार जन्म मरण के दुखों में जाना पड़ता है। कहते हैं जमदर चोटा खावड़ियां, के जमदूतों के हाथों चोटें खानी पड़ती हैं, दुख और मुसीबतें झेलनी पड़ती हैं।
शब्द साध जाने ता आप पछाने, निर्मल बाणी शब्द वखाने।
अब आप फरमाते हैं कि जब तक हम अपने आप को पहचानने के काबिल नहीं बनते, हम कभी उस परमात्मा को भी पहचानने के काबिल नहीं बन सकते। अपने आप को कब पहचानते हैं? जब मन और माया के दायरे से पार चले जाते हैं, जब हमारी आत्मा से सब गंदे गंदे गिलाफ उतर जाते हैं, फिर कहीं जाकर हमें अपने आप का पता चलता है, अपने असल का पता चलता है। हम मन और माया के दायरे से कब पार हो सकते हैं? शब्दे साथ जाने ता आप पछाणे, कि जिस समय शब्द या नाम की लज्जत आ जाती है तब हम अपने आप को पहचानने के काबिल होते हैं। गुरु साहब के कहने का भाव है कि केवल वह चीज ही हमें मन और माया के दायरे से पार ले जा सकती है जो मन और माया के दायरे से पार से आती हो। वह शब्द सचखंड से उठता है। काल की पहुंच तो सिर्फ ब्रह्म या त्रिकुटी तक है। जब हम अपने आप को शब्द के साथ जोड़ देते हैं तो हम भी मन और माया के दायरे से पार चले जाते हैं। तब कहीं हमें अपने आप की समझ आती है, अपने असल का पता लगता है। हम अपने आप को उस समय पहचानते हैं जब आत्मा मन का साथ छोड़ देती है। जिस वक्त गंदे गंदे गिलाफ या पर्दे हमारी आत्मा से उतर जाते हैं, जब स्थूल, सूक्ष्म और कारण तीनों किस्म के गिलाफ उतर जाते हैं, हम तीनों गुणों से पार हो जाते हैं। फिर कहीं जाकर हमें अपनी समझ आती है। यही सोक्रेटिस ने फरमाया था, नो दाई सेल्फ, पहले अपने आप को पहचानो। परमात्मा की पहचान से पहले अपने आप की पहचान जरूरी है। जब तक हमें अपना ही पता नहीं लगता कि हम कौन हैं, कहां से आए हैं, कहां जा रहे हैं, हमें उस परमात्मा का क्या पता लग सकता है। हमारी आत्मा तो प्योर थी, पवित्र थी, लेकिन मन का साथ लेने के कारण अति गंदी और मैली हो चुकी है। मैंने कई बार मिसाल दी है कि बादलों के अंदर पानी कितना साफ और निर्मल होता है, लेकिन जिस समय बरसात बनकर ज़मीन पर आता है, कितनी गंदगी इकट्ठी कर लेता है। इतनी बदबू आती है कि कोई पास खड़े होने के लिए भी तैयार नहीं होता। वह पानी भी अपने आप को गंदगी का ही हिस्सा समझना शुरू कर देता है। जिस समय उसको सूरज की तपश मिलती है, वह गंदगी को छोड़ देता है और भाप बनकर ऊपर उठ जाता है। तब उसको पता लगता है कि मैं कोई और चीज़ हूँ, ये गंदगी कोई और चीज़ है। मैं बेकार ही इस गंदगी का साथ लेकर अपने आप को गंदगी समझे बैठा था। फिर जब उसे अपने असल के बारे में पता चलता है कि मेरा असल तो आकाश का बादल है, तब वह सीधा आकाश में जाकर अपने असल में समा जाता है। यही हमारी आत्मा की हालत है। ये परमात्मा का अंश है, सतनाम समुन्द्र की बूंद है, पर मन का साथ लेकर, मन और माया के अधीन होकर अति गंदी और मैली हो चुकी है। जब तक ये मन का साथ नहीं छोड़ती, इसको कभी अपने आप की होश नहीं आ सकती और ना ही अपने असल का पता लग सकता है। सो गुरु साहब फरमाते हैं, शब्दे साथ जाने ता आप पछाणे, कि जिन्हें अपने अंतर में शब्द की लज्जत आ जाती है, जो अपने अंदर नाम की कमाई में लग जाते हैं, वह भाग्यशाली जीव अपने आप को पहचानने के काबिल बन जाते हैं। गुरु अमरदास जी कहते हैं, गुरमुख आप पछाणे संतो राम नाम लिवलाई, के गुरमुख वह हैं जो राम नाम के साथ प्यार करके अपने आप को पहचानने के काबिल बन जाते हैं। ये राम नाम कोई लफज नहीं है, बल्कि वह ताकत है जिसने सब दुनिया की रचना की है, जिसके आधार पर हमारे खंड ब्रह्मांड खड़े हैं और जो सबके अंदर रमी हुई है। जब तक हम अपने आप को उसमें लीन नहीं करेंगे, हम कभी भी अपने आप को पहचानने के काबिल नहीं बन सकते। फिर तीसरी पातशाही गुरु अमरदास जी फरमाते हैं, जिन अंतर शब्द आप पछाणे गत में तिन ही पाई, कि जो अपने अंदर शब्द को पकड़कर अपने आप को पहचानते हैं, असली गति, मालिक के मिलने की असली युक्ति उनको ही प्राप्त होती है। गुरु साहब के समझाने का भाव है कि हमें भी अपने आप को पहचानना चाहिए। अपने आप को हम गुरुमुखों के जरिए शब्द का अभ्यास करके, नाम की कमाई करके ही पहचान सकते हैं।
सच्चे सेव सदा सुख पायन, नौनिद नाम मन वसावनिया।
जब हम अपने आप को पहचानने के योग्य बन जाते हैं, तो फिर हम सच्चे परमात्मा की सेवा में लगते हैं, फिर हम उसकी भक्ति करते हैं, उसके साथ प्यार करते हैं। अभी तो हम झूठी दुनिया की सेवा में लगे हुए हैं, झूठी दुनिया की भक्ति और प्यार में लगे हुए हैं। जब भी हम सच्चे की सेवा में लगते हैं, शब्द या नाम की कमाई करके ही लगते हैं, फिर हम खुद भी शब्द या नाम की कमाई करते हैं और औरों को भी शब्द या नाम की कमाई करने का शौक पैदा करते हैं।
सोथान सुहाया जो हर मन पाया, सत संगत बह हर गुण गाया।
अब जब हमारे मन के अंदर मालिक की भक्ति करने की चाह और प्रेम पैदा हो जाता है, तो आम तौर पर हम सोचते हैं कि घर बार छोड़कर मंदिरों और गुरुद्वारों में जाकर भक्ति करें। अगर मन जरा और उत्साह दिखाता है, तो सोचते हैं कि हिमालय पर्वत पर जाकर भक्ति करें और बाल बच्चों को त्याग दें। पर गुरु साहब समझाते हैं कि परमात्मा की भक्ति के लिए कौन सी जगह अच्छी है। आप फरमाते हैं, सारी दुनिया उस परमात्मा ने बनाई है, उसने कोई बुरी जगह नहीं बनाई। हम ही अपने विचारों से किसी जगह को बुरा बना लेते हैं, किसी जगह को अच्छा बना लेते हैं। इसलिए आप समझाते हैं कि जिस जगह भी हमारा मन लगता है उसी जगह परमात्मा की भक्ति करनी चाहिए और वही जगह हमारी भक्ति के लिए अच्छी है, जहां भक्ति का वातावरण हो। वह कौन सी जगह है? गुरु साहब समझाते हैं वह गुरुमुखों का सत्संग है, गुरुमुखों की संगत और सोबत है। आपके कहने का भाव है कि गुरुमुखों के सत्संग के द्वारा, गुरुमुखों की संगत और सोबत के द्वारा ही हमारा ख्याल परमात्मा की भक्ति की ओर जाता है। हम तीर्थों में, सत्संगों में, मंदिरों, मस्जिदों, गुरुद्वारों में इसलिए जाते हैं कि उन जगहों पर भक्ति का वातावरण बना हुआ है। हम भी उस वातावरण से लाभ उठाकर भक्ति करें। अगर हमें वहां जाकर वह वातावरण नहीं मिलता, वहां पशुओं की मंडियां ही लगती हैं, प्रचार और पब्लिसिटी के मंच ही बने हुए हैं, या चहल पहल मेले मौज की जगह ही बनी हुई है, तो वहां जाकर हमारा मन किस तरह एकाग्र हो सकता है? गुरु साहब समझाते हैं कि कोई खास जगह परमात्मा की भक्ति के लिए नहीं है, सभी स्थान परमात्मा की भक्ति के योग्य हैं। हमें इन जगहों को भक्ति के योग बना लेना चाहिए। किस तरह बनाना चाहिए? सत्संग के द्वारा भक्ति के काबिल बना लेना चाहिए, वह वातावरण बना लेना चाहिए जिसमें बैठकर हम परमात्मा की भक्ति कर सकें, शब्द या नाम की कमाई कर सकें। सो आप उपदेश देते हैं कि जहां हमें गुरुमुखों की संगत, सत्संग और सोबत मिल जाती है, वही जगह हमारे लिए परमात्मा की भक्ति करने के काबिल बन जाती है।
आन दिन हारे साला है साचा, निर्मल नाद वजावण्या।
आप समझाते हैं कि ऐसे गुरुमुखों की संगत और सोबत में जाकर हम हमेशा के लिए हरि की सराहना करनी शुरू कर देते हैं, मालिक के गुण गाना शुरू कर देते हैं, मालिक की बड़ाई और महिमा आरंभ कर देते हैं। और फिर आप फरमाते हैं निर्मल नाद वजावण्या, कि ऐसे वातावरण में रहकर हमारा ख्याल भी उस निर्मल नाद को सुनना शुरू कर देता है। वह निर्मल नाद हमारे अंदर भी दुनकारें देना शुरू कर देता है, हमारे अंदर भी शब्द खुल जाता है। ऐसी संगत में जाकर हम उस निर्मल नाद को सुनने लगते हैं, उस शब्द या नाम के साथ हमारा ख्याल जुड़ जाता है।
मन मुख खोटी ही रास खोटा पासारा, कूड़ कमावन दुख लागे पारा, पर में पूले फिरन दिन राती, मर जन्म है जन्म गवावण्या।
गुरु साहब ने पहले समझाया था कि दुनिया के अंदर दो प्रकार के इंसान हैं, एक गुरुमुख और दूसरे मनमुख। पिछली तुकों में गुरुमुखों की बढ़ाई की है कि वह हमेशा सत्संग के द्वारा अपने अंदर मालिक की भक्ति का वातावरण बनाए रखते हैं, मालिक की भक्ति और परमात्मा के प्यार में मस्त रहते हैं और हर जगह परमात्मा की महिमा करते हैं, परमात्मा के गुण गाते हैं। अब मनमुखों की हालत बयान करते हैं। मनमुख खोटी रास खोटा पासारा, मनमुखों का ख्याल भी छूटा है। मनमुख हमेशा अपने बुरे विचार ही दुनिया में फैलाए रखते हैं, वह हमेशा झूठ के साथ ही मोह बनाए रखते हैं, वह कूड़ में ही रहते हैं और हमेशा दुख और मुसीबतें सहते रहते हैं। वह इस दुनिया को अपना बनाने की कोशिश करते हैं। ये दुनिया तो आज तक किसी की बनी नहीं, बड़े बड़े राजा महाराजा, बड़े बड़े विजेता, बड़े बड़े तानाशाह इस दुनिया को अपनी बनाते बनाते चले गए। इस दुनिया ने उनका साथ नहीं दिया तो हमारा साथ किस तरह दे सकती है? हम इसको अपनी बनाने की कोशिश करते हैं, ये अपनी बनती नहीं, हम दुखी हो जाते हैं, रोना पीटना शुरू कर देते हैं। नतीजा क्या होता है? भरमे भूले फिरन दिन राती, हम झूठ से प्यार करके दिन रात भूले फिरते हैं। ये भ्रम क्या है? जो कुछ भी आंखों से देख रहे हैं सब भ्रम है। हम इसको असली समझकर अपना बनाने की कोशिश करते हैं। भ्रम वे है जो हमारा साथ छोड़ देगा, जो चीज नष्ट और फना हो जाएगी। सो इसी भ्रम में फंसकर हम दिन रात भूले फिरते हैं, मरण जन्म के दुखों में फंसे हुए हैं। यहां भी दुखी रहते हैं और मौत के बाद भी जाकर दुख और मुसीबतें सहनी पड़ती हैं।
सच्चा साहेब मैं अत प्यारा, पूरे गुर के शब्द अधारा, नानक नाम मिले वडियाई, दुख सुख सम करे जाननिया।
अब गुरु साहब फरमाते हैं कि जब से हम सतगुरु की संगत और सोबत में आए हैं, हमें वह परमात्मा बहुत ही प्यारा लगने लगा है। हमारे अंदर उस मालिक से मिलने का सच्चा शौक पैदा हो गया है, सच्चा प्रेम और सच्चा प्यार पैदा हो गया है। अब हमें दुनिया अच्छी नहीं लगती, परमात्मा ही अच्छा लगता है, अति प्यारा लगता है। ये जो हमें परमात्मा प्यारा लगता है, ये भी हमारे सतगुरु की दया, मेहर और बख्शिश है, जिन्होंने हमारे ख्याल को शब्द या नाम के साथ जोड़ दिया है। उनके उपदेश के अनुसार जब हमने शब्द या नाम की कमाई की तो इस दुनिया का मोह या प्यार निकल गया और हमें परमात्मा प्यारा लगने लगा। आपने शब्द के शुरू में ही कहा था, गुर शब्दी सच्ची लिव लाए, यानी गुरमुखों के जरिए शब्द की कमाई करके तुम्हारे अंदर सच्चे परमात्मा के लिए लगन पैदा हो जाएगी। सारे शब्द में सिस्टमैटिकली आपने समझाया है कि किस तरह दुनिया झूठी है और किस तरह हम इसके मोह या प्यार में फंसकर दिन रात भटकते फिरते हैं, और सच्चे परमात्मा के लिए जो सच्ची लिव हमारे अंदर पैदा होनी है वह किस प्रकार पैदा होगी। सब कुछ बयान करने के बाद आप फरमाते हैं कि अब हमारे अंदर सच्चे परमात्मा की लिव लग चुकी है, सच्चे परमात्मा का प्यार हमारे अंदर जाग उठा है। ये जो भी दया, मेहर और बख्शिश हम पर है सब हमारे सतगुरु की है।
सच्चा साहेब मैं अत प्यारा, पूरे गुर के शब्द अधारा, नानक नाम मिले वडियाई, दुख सुख सम करे जाननिया।